Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Text Number 27. Bhagavan Sri Krishna ke mukharvind se nikle huye in atyant hi pavitra shabdo ko mere saath saath ucharan karne ka priyas kijiye. Bhagavan kehte hain, Prashanta manasam hinam yukinam sukhamuttamam upaiti शांतरजसं ब्रह्मभूतं मकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं मकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषं। शब्दकार प्रशांत अर्थात कृष्ण के श्री चरणों में स्थित शांत मनसम जिनका मन ही निश्चित ही एनम यह योगिनम योगी सुखम सुख उत्तमम सर्वोच्च उपैति प्राप्त करता है शांत रजसम जिसकी काम इच्छा शांत हो चुकी है ब्रह्मभूतम अर्थात परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्त अकल्मषम अर्थात समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। अनुवाद जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मिक एकता को समझता है और जिस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते परम। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवाई मन कृष्ण पदारविंदयो। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। श्लोक नंबर 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्म शम सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। शब्दों का अर्थ युञ्जन अर्थात अभ्यास से प्रवृत्त होना एवं इस प्रकार सदा सदैव आत्मानं स्व यानी आत्मा को योगी योगी जो परमात्मा के संपर्क में रहता है विगत मुक्त कल्मशः सारे भौतिक दूषण से सुखेन दिव्य सुख से ब्रह्म संपर्शम ब्रह्म के सानिध्य में रहकर अत्यंतम अर्थात सर्वोच्च सुखम सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। अनुवाद इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और इसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संपर्शम कहलाता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं दराति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साकृजातम् सहकार घुनाथन वितंतं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरो श्रीवासवी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान मन को कंट्रोल करने के विषय में बता रहे हैं, जैसे कि भगवान ने बताया 25 में, शनै शनै परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया। बुद्धि से ऐसा ऐसा अपने मन को समाधि में स्थित करना है, यानी मुझ पर भगवान के श्री चरणों में लगाना है। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि न चिंतयत्। और अपने आप को आत्मा समझते हुए आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने का ही एकमात्र अपने जीवन का गोल बनाना है, उसके अंदर फिक्स हो जाना है कि मैं मुझे अपने जीवन का यह गोल प्राप्त करना है और उसके अतिरिक्त किंचित अपि न सिद्धयत् किंचित अपि न चिंतयत्। इसके अतिरिक्त और कुछ भी चिंता नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है, यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम्। जैसे जैसे मन क्योंकि चंचल है अस्थिर है, तो अगर वो चंचलता के कारण विचरण करने चला जाए कहीं पर तो क्या करो, ततस्ततो नियम्यत आत्मन्येव वशम् नियत। तो फिर उसको वहां से पकड़ कर खींच कर वापिस से आध्यात्म में लेकर आना, केंद्रित करना है, क्योंकि मन की चंचलता तो मन का स्वभाव है। और भगवान ने कहा ऐसा करने से तुम्हें लाभ क्या होगा, आज में भगवान उसका लाभ बता रहे हैं कि यदि तुमने मन को मुझ में स्थित कर दिया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं प्रशांतम मनसम येनम, प्रशांतम भगवान के श्री चरणों में जो मन होगा लग जाएगा तो योगिनम सुखम उत्तमम। इससे योगी को, योगी मना जो भगवान के साथ अपने रिश्ते को अपने संबंध को जोड़ता है और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में फिक्स कर देता है, उसे क्या प्राप्त होता है, योगिनम सुखम उत्तमम, सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख उसे प्राप्त होता है। वास्तव में भक्तों इस संसार में हम सब अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जीव जब से संसार में है तो अपने अपने हिसाब से बोलता है कि इस तरह से मुझे सुख प्राप्त करना। और अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो हर कोई सुख कैसे प्राप्त कर रहा है, सेवा करके। आप देखो भले संसार में अगर एक जैसे टिपिकल मैरिज लाइफ होती है, उसमें पति क्या करता है, सारा दिन से जॉब पे जाता है, अर्निंग करता है और घर पे आता है तो सबकी फरमाइशें होती हैं। बच्चा बोलता है पापा मुझे स्कूल बैग चाहिए, बेटी बोलती है मुझे ये कोर्स करना है, पत्नी बोलती है मेरी साड़ी मुझे नई साड़ी चाहिए, मुझे है ना ज्वेलरी चाहिए ये, और है ना फिर वापस माँ उसकी बोलती है बेटा फर्नीचर घर का बहुत पुराना हो गया है। तो वो क्या करता है कि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके धन जमा करता है और सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। और इसी तरह से पत्नी भी अपने कर्तव्यों को पूरा करती, घर पे रहती है और प्रसाद बनाती है और पति की सेवा करती है या फिर घर वालों की सेवा करती है, सोचती है कि इस तरह से मैं इनको प्रसन्न करूं। और जो संतान है वो भी ये सोचते हैं कि भाई अगर अच्छी संतान है तो जिस तरह से मेरे माता पिता की हम मेरे में से ये एक्सेप्टेशंस हैं तो मैं उनको पूरा करूं और इस तरह से उनको प्रसन्न करूं। जीव क्या करता है, सदैव प्रसन्न होने का प्रयास करता है, लेकिन विडंबना ये है कि इस संसार में कोई भी जीव किसी से प्रसन्न नहीं होता है ना। भले ही पति कितना कितना पूरा टाइम काम कर कर करके कर मुश्किल से आता है, कमाता है और विशेष पूरी करता है, लेकिन फिर भी वह सब यही कहते, करते जो आप हमारे लिए, है ना, आपने हमारे लिए। एक दिन कभी ऐसा होता है कि उसकी विश पूरी नहीं, बोला आपने हमारे लिए किया है क्या है? माता को हमेशा संतान बोलती है, आप तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो। भले ही सारी जिंदगी उसके लिए सर्व कर दी, लेकिन फिर भी कोई संसार में किसी से संतुष्ट हुआ नहीं आज तक। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर श्री प्रभुपाद ने नेक्स्ट श्लोक के ना तात्पर्य में दिया है, जिसमें ब्रह्म संस्पर्शम के शब्द को श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से वेरीफाई किया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, है ना। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको यदि हम जान लेते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जीव आत्मा भगवान का अंश है और इसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्शन कहलाता है। जो ब्रह्म संस्पर्शम लिखा हुआ है ना, कि ब्रह्म के साथ सानिध्य प्राप्त, जब तक सुख प्राप्त नहीं होगा तब तक हम अपनी रियल स्टेज को नहीं समझेंगे। हम इस संसार में सबकी सेवा करके क्या सोचते हैं कि हमारी स्टेज ये है, मैं पति हूँ तो मुझे इसकी सेवा करनी है, मैं पत्नी हूँ तो मुझे इसकी सेवा करनी है, बच्चा हूँ तो मैं देश का नागरिक हूँ तो मुझे देश की सेवा करनी है। मैं अगर कोई भी अपने आप को क्या सोच रहा है, ये फिजिकली बॉडी मेरी किससे किस रिलेशन में है, उसी के द्वारा मैं संतुष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविक अवस्था को जब तक जीव अपने नहीं जानता, जीव आत्मा का, श्री प्रभुपाद ने बताया, जीव आत्मा भगवान का अंश है और इसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करने से है। कि जब तक हम जीव अपने दिव्य सेवा, अपने दिव्य स्टेज को नहीं जानता और उसके अनुसार सेवा नहीं करता है, तब तक आनंद प्राप्त करना असंभव है। तो जीव आत्मा का स्टेज क्या है, कि वो भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं, ममैव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन, कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। तो अब मेरे अंश हैं इतना जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि आप जिसके भी अपने आप को जिसका भी कुछ समझते हो उसकी सेवा करके आप प्रसन्न होते हो उस भौतिक जगत में भी। लेकिन जब अब आपको पता चल गया कि आप भगवान के अंश हो, तो भगवान की सेवा करके आपको संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। और किसी की सेवा हम कैसे करते हैं? जैसे उससे अच्छा लगता है, है ना। जैसे अगर कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है तो हम उसको अपनी मर्जी से कुछ नहीं, वो उससे पूछेंगे आपको ठंडा चाहिए या गरम। अगर उसको गरम मतलब दूध पीने की आवश्यक दिल हो रहा है और हम उसको कोल्ड ड्रिंक ला के देंगे तो वो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है और भी उसको खेद होगा। उसी तरह से अब भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं वो भगवान जब हमें बताएंगे तब हमें पता चलेगा। और भगवान कहते हैं, मुझे प्रसन्न करना कोई हार्ड नहीं, बल्कि इस भौतिक जगत में क्या होता है, कोई हमसे हम किसी के लिए कितना भी कर ले कोई प्रसन्न नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, और फिर वापस से वही रोना कि आप मेरे लिए कुछ करते नहीं हो। लेकिन इस संसार में भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान ने बहुत ही सिंपल चीजें बताई। भगवान बताते हैं 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छते। अगर आप मुझे एक पत्ता भी दे दोगे, एक पत्ता, कोई वैल्यू नहीं, कोई धन उससे खर्च करना नहीं पड़ता, पुष्पम फलम तोयम ये सब मुफ्त की चीजें हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं यदि आप मुझे दोगे तो मैं वो स्वीकार करूंगा और प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ शर्त रखी भगवान ने, जो में यो में भक्त क्या प्रयास्यते कि आपको भक्ति से मुझे प्रदान करना है। भक्ति का मतलब होता है कि मुझसे प्रेम करना है आपको। यदि आप प्रेम के साथ मुझे कुछ भी अर्पण करोगे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो वस्तु भगवान आइटम से नहीं, भगवान आपके भाव को ग्रहण। यहाँ तक कि अगर ऐसा हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उस वहां भगवान कहते हैं कि यदि आपके पास सामग्री नहीं है, यदि आप कोई भी वस्तु, ये वैसे तो ये अर्पण करो, लेकिन यदि आपके पास ये भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, फूल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो क्या करो, आप मन से केवल भाव से मुझे अर्पण कर दो। भावग्राही जनार्दन, यदि आप केवल मन से भी मेरी मानसिक सेवा भी करोगे, प्रेम से करोगे, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। इस विषय में बहुत ही सुंदर एक कथा हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अत्यंत ही सुंदर। एक ब्राह्मण होता है और उसके पास कुछ धन नहीं होता है, कोई सामग्री नहीं होती है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। तो क्या करता है, उसने जब सुना कि भगवान केवल मन के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मन से सेवा करने के लिए ही, तो फिर वो क्या करता, रोज ध्यान में बैठ जाता और ध्यान करते करते गंगा जाता, गंगा के जल भर के लेकर आता और भगवान को स्नान कराता। उसके बाद भगवान को रोज नए वस्त्र अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर्स के पहनाता और भगवान को बहुत ही सुंदर फूल मालाएं पहनाता। और उसके बाद डेली 56 भोजन बनाता, 56 भोजन भगवान को अर्पण करता, सब कुछ ध्यान में कर रहा है, रोज ऐसे करता और अलग अलग आइटम्स भगवान को प्रसाद के बना के खिलाता। आज उसने बहुत ही सुंदर स्वीट राइस, वो भगवान के लिए खीर बनाई और खीर बना के आज सोचा भगवान को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मेहनत से बनाई और भगवान सब प्रसाद अर्पण करने लगा। तो क्योंकि खीर आखिर में बनाई थी, तो जैसे ही पर्दा बंद करने वाला था, तो फिर उसने सोचा खीर बहुत गर्म होगी तो भगवान को ऐसा लगेगा कि इतनी गरम गरम कैसे खाएंगे भगवान, मैं देखूं गरम तो नहीं है ज्यादा, अर्पण करने से पहले चेक कर दूं। तो उसने जैसे ही उस दूध के अंदर, वो जो खीर बनाई थी उसके अंदर जैसे ही फिंगर डाली, तो उसने जोर से बोला आ, मना उसके मुंह से निकला कि ये तो गरम है। तो जब उसके मुंह से निकला आ, तो जब उसने देखा, उसका ध्यान टूट गया और उसने देखा उसकी पूरी उंगली जली हुई थी, मतलब जैसे गरम गरम चीज में हम कहते डालते लाल हो जाती पूरी उंगली, ऐसे हो गई थी। फिर ये यहाँ पर चल रहा था और वहां वैकुंठ में भगवान स्माइल मुस्कुरा रहे हैं, भगवान इतना हंस रहे हैं। और है ना, श्रीमती जी पूछती है कि भगवान आप क्यों अकस्मात मुस्कुरा रहे हो, इसका क्या कारण है जनार्दन? तो भगवान कहने लगे कि देखो ना, वो मन से मुझे खीर अर्पण कर रहा था और उसकी उंगली चल गई। तो जब श्रीमती जी भी देख रही थी और वैकुंठ में भगवान इस सेवा से प्रसन्न हो रहे थे, यानी कि भगवान का रिलेशन केवल इस भौतिक जगत में हम जो ये कर रहे होते हैं सेवा, विग्रह सेवा करते हैं, उसका यहाँ तक ही खाली असर नहीं कि भगवान के सामने रखा और हम वापस से 15 मिनट के बाद अर्पण करके एक माला करके उठा लेते हैं और फिर खुद खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कण कण में है, भगवान हमारे उस भाव को स्वीकार करते हैं जी। यदि छोटी सी भी सेवा अपने भगवान की करता है तो भगवान अवश्य उससे प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रशांतम मनसहीनम योगिनम सुखम उत्तमम। इस तरह से जब मन भगवान के श्री चरणों में स्थित हो जाता है तो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, परम सुख, दिव्य सुख प्राप्त होता है और ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होती है। ब्रह्मभूत अवस्था के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने 18.54 में बहुत अच्छा बताया, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान बताते ब्रह्मभूत स्थिति क्या, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत को प्राप्त कर लेता है, यानी उसे अनुभव हो जाता है कि मैं हाँ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, तो क्योंकि अब वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्म में स्थित हो गया है, तो भौतिक जितने भी दुख हैं, जितने भी आकांक्षाएं हैं, उसको तंग नहीं करती, ना शोचती ना कांक्षती। यानी यहाँ पर जो भगवान बताते हैं शांत रजसम। अब रजसम का क्या मतलब होता है? रजोगुण यानी इच्छाएं। इच्छाएं किसकी होती है? केवल शरीर की। यहाँ पर भौतिक जगत में हमारी जो भी हम सोचते हैं या हमारी इच्छा है वो हमारे शरीर की इच्छा होती है, लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और अब कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर शोक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो क्या हो जाता है? समम समह सर्वेषु भूतेषु, वो समस्त जितने भी जीव हैं उनके साथ इक्वल हो जाता है। किसी वस्तु की कामना नहीं होता, प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। अब संभाव किस तरह रखता है? यानी हर किसी से प्रेम करता है। अब हर किसी से प्रेम क्यों करता है, मतलब किसी से द्वेष नहीं करता? क्योंकि उसे पता है जिस प्रकार मैं भगवान का अंश हूँ, उसी तरह से यह संपूर्ण जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब भगवान के अंश हैं। तो फिर नश समह सर्वेषु भूतेषु और मद भक्तिम लभते परम, इस तरह से उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यानी ब्रह्मभूत प्रसन्न ब्रह्मभूत जब हो जाता है, आध्यात्म में स्थित हो जाता है, सबको भगवान का अंश समझता है, उसके बाद उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। उसका रिजल्ट ये होगा कि भक्ति करेगा वो, भगवान की भक्ति। यानी यहाँ पर आज हमें क्या भगवान बताते हैं? उपैति शांत रजतम, उसके रजोगुण जो है वो समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, और वो ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाएगा, और अकल्मषम अर्थात संपूर्ण पाप उसके नाश हो जाएंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्तिम लभते परम, ये इसके साथ टच है। अगर हम इस तरह देखेंगे ना तो हमें अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जीव जब भक्ति करता है भगवान की तो उसके समस्त कलमश नष्ट हो जाते हैं। और किस तरह से समस्त जीवों को समह सर्वेषु भूतेषु, क्योंकि वो कल्याण करना चाहता है। अब एक भक्त की यही इच्छा होती है कि किस प्रकार से मैं समस्त जीवों का कल्याण करूं। यहाँ पर लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं भक्तों के ऊपर कि भक्त लोग कुछ नहीं करते, केवल क्या करते रहते हैं, सिर्फ बस हरे कृष्णा खुद भी जप करते रहते हैं और दूसरों को भी केवल यही बताते रहते हैं कि आप भगवान के पवित्र नाम का जप करो। और कोई काम, कोई मतलब सोशल वर्क भी तो करना चाहिए लोगों के लिए, स्कूल खोलने चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए, लोगों को दान देना चाहिए, इतनी सर्दी है कम्बल स्वीटर दान दो, और है ना खाना आना सब, ये दान वान नहीं करते, बस खाली हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो अत्यंत सुंदर शास्त्र में एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसे समझ सकते हैं हम कि कौन कितनी सेवा कर रहा है और कौन कैसी परफेक्ट सेवा कर रहा है। जैसे एक राजा उसका बेटा खो जाए, है ना, एक राजा उसका बेटा खो जाए और बेटा भी अपनी याददाश्त खो दे, यानी राजा, अब राजा से तो वो अलग हो गया लेकिन वो अपनी याददाश्त भी खो दे कि मुझे याद नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो अब राजा तो हर जगह पर सोच बेचता है लोगों को कि किसी तरह से मेरे बच्चे को ढूंढ के आओ। अब उस बच्चे को रास्ते में किसी ने देखा और देखा कि उसको कितनी भूख लगी है, उसके पास कुछ खाने को है नहीं, तो उसको खाना लेकर दे दिया कि बेटा ये लो खाना खाओ, उसका पेट भर गया और वो संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर के बाद कोई और उसको अमीर मिला और उसने देखा कि इसको तो सर्दी लग रही है, थोड़ा बुखार भी हो रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, चेकअप भी करवाया, उसको मेडिसिंस लेकर दी और वो संतुष्ट हो गया थोड़ी देर के लिए। और फिर तीसरा बंदा आया, उसने देखा कि इसके पास है ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, तो उसने उसको कपड़े लेकर दिए और उसको मतलब अच्छे कपड़े पहनाए, तो वो तभी वो संतुष्ट हो गया। अब वो इतना वेल ड्रेस्ड लग रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मतलब खाना भी खाया हुआ था, तो जा रहा था, लेकिन क्योंकि याद नहीं था ना मैं किसका बेटा हूँ, तो वो अपने राजा के पास नहीं जा रहा था। अचानक से एक व्यक्ति जिसने देखा कि अरे ये तो वही बेटा है जिसने हमें जो राजा जिसको ढूंढ रहा है, यानी कि जो इतनी सारी न्यूज अभी आ रही है, न्यूज़पेपर में लिखे हुए हैं और टीवी में फोटो आ रहा है, ये तो वही लड़का है, इसी को तो राजा ढूंढ रहा है। तो वो क्या करता है, उस राज बेटे को बताता है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो बोला नहीं मुझे नहीं पता। बोला तुम राजा के बेटे हो? अच्छा, फिर बोला चलो मैं तुमको राजा के पास लेकर जाता हूँ। फिर वो राजा के पास उसको लेकर जाता है, किसी तरह से डॉक्टर पे डॉक्टर मतलब उसकी इलाज करवाता है, उसकी याददाश्त वापस से आ जाती है और फिर वो उसको राजा के पास लेकर जाता है, उसको अपने पिता से मिलाता है। उसके संपूर्ण कष्ट उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब वो अपने पिता यानी राजा से मिलता है। उसी तरह इस संसार में जब हम जीवों की थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं, कोई किसी को कपड़े लेकर देता है, कोई किसी को खाना लेकर देता है, कोई किसी को मेडिसिन, वो टेम्पररी हेल्प है। ऐसा नहीं है कि उससे जीव के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन यदि भक्त क्या करते हैं, भक्त जीव को उसकी वास्तविक पहचान देते हैं कि तुम ये मनुष्य जीवन जो तुम्हें मिला है, ये तुम इस तरह से कुत्ते बिल्लियों की तरह खाते पीते रहने के लिए या इस तरह से सरवाइव करने के लिए नहीं मिला है कि आप आओ संसार में खाओ पियो दुख भोगो और मर जाओ, बल्कि तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने के लिए मिला। भगवान ने कहा पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो भक्त सबको क्या बताता है कि तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कृष्ण के बच्चे हो, अगर तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हारे संपूर्ण दुख बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतिम। तो वास्तव में यदि कोई किसी का वास्तविक कल्याण करता है तो केवल भक्ति करता है, क्योंकि वो उसको उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाता है जहां पर आकर उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। और यही चीज यहाँ पर भगवान बताते हैं उपैति शांत रजसम, जब आपकी भौतिक जितनी भी इच्छाएं हैं वो शांत हो जाएंगी, रजोगुण समाप्त हो जाएगा, ब्रह्म भूतम अकल्मषम, आप ब्रह्म भूत स्थिति को पहुंचोगे और समस्त संपूर्ण जितने अपराध हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते जब तक मनुष्य का मन भगवान के श्री चरणों में स्थित नहीं होता है तब तक कोई ब्रह्मभूत स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मभूत स्थिति में यानी आपको ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए कि आपको भौतिक किसी वस्तु की इच्छा ना रहे, है ना। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रिय, ऐसा बुद्धि से आप सुख को प्राप्त करो कि वो आत्यंतिक सुख हो। और उसका पता कैसे चलेगा, वेति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्त्वतः, और उसे प्राप्त करने के बाद मन कभी विचलित हो ही नहीं, क्योंकि वो इतना आत्यंतिक सुख होगा कि और कोई वस्तु आपको अट्रैक्ट करेगी नहीं। लेकिन भौतिक संसार में कोई ऐसा सुख हो नहीं सकता। और यम लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्त्वतः, कि जब वो प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या सोचोगे इससे बढ़कर कोई सुख होता ही नहीं। तो जब तक श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक आप भगवान के श्री चरणों में स्थित नहीं हो जाओगे, भौतिक कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे प्राप्त करने के बाद आप ब्रह्म बोध को प्राप्त कर सको, यानी कि कोई इच्छा आपके अंदर नहीं रहे और उसे प्राप्त करके सोचो कि सबसे बड़ा सुख इसी में है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्ति है। कि वास्तविक मुक्ति क्या है कि आप उस स्टेज को प्राप्त कर लो जहां पर पहुंचने के बाद आपको उससे अधिक सुख और कहीं दिखे नहीं, विचलित ना हो मन, और जितने भी दुख अगर संसार में आते हैं तो भी आपको ये लगे कि इससे अत्यधिक सुख कहीं नहीं है, तो कोई भी दुख भी आपको दुखी ना कर सके। आगे भगवान ने बहुत अच्छा बताया है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मश, युञ्जन एवं एवं मतलब इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे जैसे हमने पहले पढ़ा ना ऊपर कि प्रशांतम मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम, कि जब योगी आध्यात्म में स्थित हो जाता है, जिसका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है और जान जाता है अपनी वास्तविक स्थिति के मैं क्या हूँ, तो इस तरह से जब योग अभ्यास में प्रवृत्त हो जाता है, इस तरह से जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और उसी के अनुसार भगवान की सेवा करने में अपने मन को लगाता है और भौतिक रजोगुण समाप्त हो जाते हैं, तो ब्रह्म बोध को जब प्राप्त कर लेता है तो विगत कल्मश, जितने भी पूर्व जन्म में उसके कल्मश हैं, जितने भी अपराध हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तो मेरी शरण में आ जाओगे, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे समस्त अपराधों को मुक्त कर दूंगा। और वो कैसे होगा, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, अब जिस तरह से हम सोच रहे थे कि किसी गेस्ट को घर पे आएगा तो उसकी सेवा हमें कैसे करनी है, उसकी इच्छा के अनुसार। तो भगवान की सेवा कैसे करनी है? भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान कहते हैं, भगवान बताते हैं कि इस संसार में यदि आपको मेरी सेवा करनी है तो केवल मेरे नाम के द्वारा कर सकते हो। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का जप करके, भगवान की कथाओं को श्रवण करके हम भगवान की अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से जैसे जैसे हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से, देखो सेवा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये भाव मन में हो कि मैं इस सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें अच्छा न लग रहा हो कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं या कथा सुनने में भी हमें रुचि नहीं, तो लेकिन भले नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, भले हमें भगवान का नाम का जप करने में आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी हम घर में खाना बनाते हैं, हमारा मन नहीं होता है कि हम काम करें कोई, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में सबको प्रसन्न करना होता है, पति को, बच्चों को, इसीलिए हमको करना पड़ता है ना। उसी तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करना पड़ता है जो कि भगवान चाहते हैं। तो भगवान हमसे यही उपेक्षा करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप करें और ज्यादा ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करें। तो उससे क्या करना है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, विगत कल्मश। वास्तव में तो जब तक विगत कल्मश नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक श्रवण और कीर्तन नहीं होगा तब तक विगत कल्मश नहीं होगा। तो क्या होगा, विगत कल्मश मतलब अपराधों से मुक्ति नहीं होगी। तो हम कैसे भी करके हमें समय निकालना है भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए। अब जाहिर सी बातें संसार में हैं तो और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी भगवान के लिए अगर हम समय नहीं निकालते हैं तो फिर अपराध, तो फिर वही होगा, अपने कर्म करते रहेंगे, अपराध बढ़ते रहेंगे और मुक्ति संभव नहीं। तो यहाँ पर भगवान आगे बहुत ही सुंदर बताते हैं एक लाइन में, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। अगर आप वाकई में इस आध्यात्मिकता में स्थित हो जाते हो, ब्रह्म संस्पर्शम का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि जीव अपने भगवान के साथ संबंध को समझ लेता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर भगवान की सेवा करता है, तो इस तरह से उसको वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो शुरू में भले ही आनंद नहीं आता है, लेकिन ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमें इतना आनंद आने लगता है उसी भक्ति में, भगवान के पवित्र नाम को जप करने में, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण नाम चरितादि सिद्धार्थ विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु के भगवान का पवित्र नाम तो मिश्री की तरह मीठा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, हमें मीठा नहीं लगता। इसका कारण ये नहीं कि भगवान के नाम में कोई दोष है, इसका ये कारण है क्योंकि हम ही रोग से पीड़ित हैं। यदि कोई रोगी होता है, बुखार में होता है, पीलिया या ड्रेंडेक्स जिसको हो जाता है, उसको मीठी मीठी वस्तुएं में खिलाते तो उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो रोगी है, लेकिन जब उसका रोग समाप्त हो जाता ना फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, आप इसको खिलाते रहो, टेस्ट स्वतः डेवलप हो जाएगा और उसको अच्छा लगने लगेगा। अब क्योंकि हम भी जन्म जन्मांतर से भौतिक रोग से पीड़ित हैं और अब ये मनुष्य जन्म में हमें यह चांस मिला है कि भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, भगवान की कथाओं को, भगवान की पवित्र लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं। अच्छी नहीं लगती है ना, अच्छी नहीं लगती है तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ दो, बल्कि उसको करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा भी टेस्ट डेवलप हो जाएगा और फिर हमें भी भगवान के पवित्र नाम में आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, उत्साह निश्चयान धैर्य, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ कि इसी से कल्याण होने वाला है, और जोश के साथ ये कार्य करना है और धैर्य से करना है कि धैर्य से एक न एक दिन, वो दिन एक दिन जरूर आएगा जब मैं इस आनंद को प्राप्त करूंगा जिसके लिए जिसके विषय में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस तरह से उसे इतना भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त हो जाता है और वो सुख अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन भौतिक वस्तुओं को, भौतिक व्यक्तियों को प्रसन्न करते 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 आज तक करोड़ों जीवन गुजर गए हैं, ये जीवन भी गुजर जाएगा और यह स्टेज तब तक नहीं आएगी जब तक ब्रह्म संस्पर्शम, जब तक हम अपने आध्यात्मिक वास्तविकता को जानकर उस भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़कर भगवान की सेवा स्टार्ट नहीं कर देते, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं शुरू करते, भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण नहीं करते, तब तक भले संसार में कितना ही प्रयत्न कर लें, हम इस अत्यंतिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके विषय में भगवान ने हमें आज बताया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।